बहाई धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो स्त्री पुरुष की समानता के सिद्धांत में अति स्पष्ट है। प्रिय मास्टर अब्दुल बहा नारियों के सम्मान में कहते हैं कि बहा की दृष्टिकोण में नारियों को पुरुषों से भिन्न नहीं माना गया है, साथ ही पुरुष तथा स्त्रियां समान रूप से ईश्वर के नामों और वृत्तियों के संवाहक है। आध्यात्मिक दृष्टि बिंदु से उनमें कोई अंतर नहीं, यहां तक कि पुरुषों से उनके अधिकार भी समान है। जहां हम इतिहास के स्त्रियों की चर्चा करें तो कई स्त्रियों के बलिदान, आत्मविश्वास, साहस तथा ईश्वर के लिए उनके अटूट प्रेम ने समाज में एक अलग ही छाप छोड़ी है। और सर्वप्रथम जिस महिला का जिक्र हमारे जुबान पर आता है वह है ताहिरा, जिसके साहस और समाज में उठाए गए आवाज ने पुराने नियमों का अंत किया, साथ ही एक नए युग के प्रारंभ की घोषणा की। उन दिनों उनको सलमा के नाम से जाना जाता था और बाद में उन्हें ताहिरा की उपाधि मिली। वह बचपन से ही बाकी बच्चों से काफी अलग थी। वह प्रतिष्ठित तथा बहुत बुद्धिमान थी। उनका जन्म ही एक इस्लाम के धार्मिक घर में हुआ था, जहां उनके पिता और चाचा धार्मिक नेता थे और उनके भाई भी अधिक बुद्धिशाली थे। ताहिरा को बचपन से तीनों पुरुषों के चर्चाओं से काफी धार्मिक ज्ञान मिला। उनका ज्ञान इस श्रेणी का था कि उनके पिता की यह आशा थी कि काश अगर वह पुत्र होती तो उनके पद चिन्हों पर चल अपने घर को प्रकाशित करती, साथ ही परिवार में चार चांद लगाती। पर ताहिरा के पिता को क्या मालूम था कि वह ऐसे महानता को प्राप्त करेंगी कि भविष्य में लोग उन्हें हमेशा याद करेंगे। दिव्यात्मा बाप की घोषणा से पहले दो ऐसे महान आत्माएं थीं जिन्हें यह विश्वास था कि जल्द ही एक नए ईश्वर के अवतार प्रकट होने वाले हैं, जिनकी चर्चा पुरातन धर्मों में भी की गई है। वह थे शेख अहमद एसाई और सैयद काजिम रश्ती। जब ताहिरा अपने एक रिश्तेदार के घर गई तो उन्हें उन दो महान विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकें देखी। उन्होंने उन पुस्तकों को घर ले जाकर पढ़ने की इच्छा जाहिर की, परंतु उनकी चचेरी बहन ने उन्हें आगाह किया कि उनके पिता को इन दो पुरुषों के पुस्तकों को पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यह आधुनिक लेखों से लिखी गई है। यह जानकर ताहिरा की जिज्ञासा और बढ़ी, क्योंकि वह खुद अपने पिता के कुछ धार्मिक विचारों से सहमत नहीं थी। उनकी रुचि बढ़ती चली गई। उन किताबों के माध्यम से उसे पता चला कि नए अवतार के प्रकट होने का समय आ चुका है। वह अपने पिता के साथ जब भी इन पुस्तकों के विषय में चर्चा करती तब वह उस पर चीख पड़ते और शेख अहमद और सैयद काजिम को बुरा भला कहते। अंततः उन्होंने अपने पिता से इस विषय पर बात करने का अपना विचार त्याग दिया और सैयद काजिम के साथ गुप्त रूप से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। ताहिरे ने सैयद काजिम से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब उन्होंने इतनी अच्छे तरह से दिया कि वह उनकी प्रशंसक बन गई। उन दिनों ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सैयद काजिम और शेख अहमद के विरोध थे। ताहिरे ने एक लंबा व्याख्यान इनके शिक्षाओं को समझाते हुए लिखा और यह साबित करने की कोशिश की कि यह दोनों शिक्षक कितने सही थे। यह वक्तव्य इतना सहज और सूचनाप्रद था कि सैयद काजिम इससे काफी खुश हुए। उन्होंने ताहिर को उनकी प्रशंसा करते हुए एक पत्र लिखा और उन्हें खुर्तुलेन के नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है आंखों का चैन। यह पत्र पाकर ताहिरे ने सैयद काजिम से मिलने की सोची और वह उनसे मिलने 26 वर्ष की आयु में कर्बला की ओर निकल पड़ी। पर जैसे ही वह उनके घर पहुंची तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उनके पहुंचने के 10 दिन पहले ही सैयद काजिम का स्वर्गवास हो चुका था। उनके परिवार ने ताहिरा को घर पर आ रुकने का निमंत्रण दिया ताकि वह वहां रहकर सैयद काजिम की लिखी किताबों और उनके विचारों को पढ़ सके। ताहिरा ने बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उनके लेखों को पढ़ा और फिर सैयद काजिम के विचारों को मानने वाले लोगों को बताना शुरू किया। यही वह समय था जब ताहिरा ने वह स्वप्न देखा। उस रात ताहिरा ने एक अद्भुत सपना देखा। उस सपने में उन्होंने एक युवक को देखा जो काले रंग का कोट और हरे रंग की पगड़ी पहने सीधे स्वर्ग से आया था। अपने हाथ ऊपर उठाए ऊंचे स्वर में किन्हीं आयतों का पाठ कर रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखते ही ताहिरा अपने सपने से जाग उठी, किंतु उन्होंने उन आयतों में से एक को कंटस्थ कर लिया था और जल्द ही उसे अपने किताब में नोट कर लिया। आगे चलकर जब ताहिरा को बाप द्वारा लिखी एक लेखनी प्राप्त हुई तो अपनी आयत को उस लेखनी में पाकर ताहिरा बहुत खुश हुई। और जब उनके बहनोई मिर्जा मोहम्मद अली काजवीन प्रस्थान करने वाले थे तो उन्होंने उन्हें एक सील बंद पत्र दिया और कहा कि जो अपेक्षित अवतार हो वे उनकी सेवा में इसे प्रस्तुत कर दें। ताहिरा ने साथ ही उन्हें कुछ शब्द कहने को कहे। मेरी ओर से उन्हें कहे, वे कहने लगी, आपके मुखारबिंद की प्रभा दमक उठी और तेरे मुखड़े की किरणें आकाश तक पहुंच गई। फिर ये शब्द कहे, क्या मैं तुम्हारे परम स्वामी नहीं हूं? और आप हैं, हम सब उत्तर देंगे। तदुपरांत ही मिर्जा मोहम्मद अली बाप से मिले और उन्होंने उन्हें पहचान लिया तथा ताहिरा का पत्र और संदेश दोनों ही उन्होंने बाप की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। तुरंत ही बाप ने ताहिरा के जीविताक्षरों में से एक होने की घोषणा कर दी। इसके बाद ये सभी जीविताक्षर बाप का संदेश लेकर निकल पड़े। परंतु जैसे इतिहास गवाह है, नए वृक्ष के तनावों को काटने के लिए शत्रु हमेशा तत्पर रहते हैं और इस समय कठमुल्लाओं के बीच ईर्ष्या का भाव पैदा हो चुका था। वह बाप और उनके मानने वालों के खिलाफ उठ खड़े हुए और अंत में बाप कैद कर लिए गए। जिस समय बाप को कैद किया गया, ताहिरा कर्बला में रहकर बाप का संदेश लोगों को दे रही थी और एक बड़ी संख्या में लोगों ने इस संदेश को स्वीकार किया। इसी दौरान शेख साले ने बाप को पहचाना और उनके प्रेम की राह में सर्वप्रथम शहीद हुए। फिर क्या था, कई अरबी साथ ही फारसी लोगों ने धर्म को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। कट्टर मुसलमान परिवार के संतानों में से जरीन ताज ही वह कन्या थी जिसने पर्दे के पीछे रहकर भी धार्मिक ज्ञान को स्वीकार किया, नए ईश्वरीय अवतार की खोज की और इतिहास में सुनहरे अक्षरों से कुरतुल ऐन की उपाधि शेख अहमद से प्राप्त की। ताहिरा का बाप का संदेश कर्बला में देना धार्मिक नेताओं के क्रोध को भड़का चुका था। उन्होंने कहा कि ताहिरा को गवर्नर के सामने लाया जाए
और उसे सजा दी जाए। सरकार के लोग उन्हें खोजने निकल पड़े, लेकिन एक गलत महिला को कैद कर लाए। जिस महिला को उन्होंने कैद किया था उसका नाम था शमसी दुहा। वह भी एक बाबी थी। जब ताहिरा को इस बात का मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत ही गवर्नर को संदेश भिजवाया कि उनके आदमियों ने एक गलत व्यक्ति को कैद कर लिया है। ताहिरा ने अपने पत्र में लिखा कि वह उन्हें कैद करे। इन सब से गवर्नर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि ताहिरा को अपने घर में ही नजरबंद कर दिया जाए। 3 महीनों तक ताहिरा को उसके घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और ना ही किसी को ताहिरा से मिलने की इजाजत दी गई। इसके बाद दिव्य आत्मा बाप की ओर से एक संदेश आया कि उनके अन्यायी खुरासान की ओर प्रस्थान करें। उस समय भले ही ताहिरा नजरबंद थी, फिर भी उन्होंने यह निश्चय किया कि वह खुरासान में होने वाले सम्मेलन में जरूर शामिल होंगी। इसी आशा से ताहिरा ने गवर्नर को पत्र लिखा और सूचित किया कि वह कर्बला से बगदाद के लिए रवाना होना चाहेंगी। अनुमति पाते ही ताहिरा अपने बाकी बाबी दोस्तों के साथ बगदाद के लिए निकल पड़ी। बगदाद पहुंचते ही ताहिरा और उनके साथियों ने दिव्य आत्मा बाप का संदेश लोगों को देना प्रारंभ कर दिया। जो भी उनसे मिलने आता, उनकी बातें सुनने आता, वह ताहिरा के बातों की नई ताकत और प्रभा से आश्चर्यचकित रह जाता। कर्बला की इस शहर में भी ताहिरा के कारण बहुत सारे लोगों ने प्रभु धर्म को स्वीकार किया। यहां तक कि ताहिरा ने कट मुल्लाओं को चुनौती दी कि अगर उनकी बातों पर यकीन न हो तो वह खुलेआम बातचीत करने के लिए तैयार है, परंतु कोई तैयार नहीं था। किसी न किसी बहाने से उन्होंने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वे उनके खिलाफ उठ खड़े हुए और इतना शोरगुल मचाया कि इसकी खबर सरकार तक को मिल जाए। बाबियों को बचाने के लिए गवर्नर ने सभी महिलाओं को जज के घर में भेज दिया। यहां ताहिरा 3 महीने तक ठहरी। अंत में गवर्नर ने उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया। इससे ताहिरा अत्यंत खुश हुई, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे दिव्य आत्मा बाप के आह्वान का पालन करें और खुरासान पहुंचे। बेहिचक ताहिरा ने सबको संदेश दिया। वह बाप की लेखनियों से पढ़ा करती थी और लोगों के सवालों का जवाब दिया करती थी। राज्यपाल और उनकी पत्नी तक उनके उपदेश को सुनने आए और उनकी व्याख्याओं से प्रभावित होकर राज्यपाल ने बाप के धर्म को स्वीकार किया। इस तरह एक शहर से दूसरे शहर तक ताहिरा ने बाप के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन जल्द ही उन्हें वापस नजरबंद कर दिया गया। इस बार उन्हें गाजवीन नामक शहर में नजरबंद किया गया। इसी दौरान बहाउल्लाह ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वे ताहिरा को छुड़ाकर तेहरान ले जाए, और इसमें जिस अनुयायी ने उनकी सहायता की वह थी उनकी सहेली खातून जान, जो ताहिरा को नजरबंद से छुड़वाने में सक्षम हुई और ताहिरा तेहरान की ओर निकल पड़ी। यहां से आरंभ होती है वह ऐतिहासिक घटना जिसने धर्म को एक नई दिशा दी है, बदश्त का सम्मेलन।